सागर धर्मांध्र लेक्चर नंबर 9 श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है और उसमें भी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 28 पर 28 13 नंबर का श्लोक हमने पढ़ा था और उस पर जो विशेषार्थ है उसको भी हमने पढ़ा था। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों के उद्धरण भी लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के श्लोक के पहले कहते हैं, आगे कहते हैं कि मिला सबको 28 नंबर पर नीचे से दो लाइन कि धर्म और सुख की तरह यश भी मन की प्रसन्नता में निमित्त है, अतः श्रेष्ठ पुरुषों को यश के कार्य भी करना चाहिए। देखो क्या कहना चाहते हैं, हम देखेंगे यहाँ गाथा पढ़ेंगे पहले। धर्मं यश शर्म च सेवमाना केप्येकशो जन्म विदु कृतार्थम् अन्येद्विषो वेद्म वयम् त्वमोघा अन्यानि यान्ति त्रयसेवयैव। उसका अर्थ देखते हैं नीचे। धर्म यश और सुख में से एक एक की साधना करने वाले कोई कोई लौकिक जन अपने जन्म को कृतार्थ मानते हैं। क्या कहना चाहते हैं, कोई धर्म की साधना करते हैं और अपना जन्म कृतार्थ ऐसा मानते हैं। कोई यश के लिए प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, उसी के प्रयत्न में रहते हैं और वो भी सफल होता है ऐसा मानते हैं। क्योंकि ऐसा मराठी में तो कहावत है, मरावे परी कीर्ति रूपी उरावे, अपनी कीर्ति पीछे रह जाए, मर जाए तो भी कीर्ति पीछे छोड़ता है जी। तो कहते लोक व्यवहार का अनुसरण करने वाले और अपने को शास्त्रज्ञ मानने वाले कुछ दूसरे जन, इन तीनों में से किन्हीं दो की साधना करने से जन्म को कृतार्थ मानते। क्या कहते, तीन बातें बताए, धर्म यश और सुख। कोई कोई तो अकेले उसमें से एक की साधना करेंगे अपने को कृतार्थ मानते हैं, यानी कृतकृत्य मानते हैं, हमने सब पा लिया, सफल हो गए। कोई क्या करते हैं कि उसमें से किसी दो की बात करते हैं, किंतु लौकिक और शास्त्रज्ञ दोनों को ही संतुष्ट करने वाले हम तो तीनों की ही साधना करने से मनुष्य जन्म के दिनों को सफल मानते हैं। अब यहाँ क्या क्या कहना चाहते हैं उसको वो स्वयं आशाधर जी ने भी संस्कृत टीका लिखी है और उसी के आधार से यहाँ विशेषार्थ भी लिखा है। यहाँ जो लिखे है गोमठ सार जीवपान की गाथा, उन्होंने ऊपर लिखी, देखो, अथ सम्यक् दृढ़त्वानंतरम शिष्ट गृहस्थानाम अवश्य आरोहणीयम्, यानी सम्यक्त्व की प्राप्ति हुए और उसको दृढ़तर किया, उसके पश्चात श्रेष्ठ गृहस्थ यानी जो भले गृहस्थों को क्या करना चाहिए, तो ये वहां यहाँ बात बताई है। जो तसवहादो हिरदो अविरदो तह यथावर वहादो एक समय जीवो विरदा विरदोजिने कमई। यहाँ इसकी बात क्यों लिखी हो तो हम नीचे पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। देखो विशेषार्थ, कहावत है कि लोगों की रुचियां भिन्न होती है, भिन्न भिन्न जीवों की भिन्न भिन्न रुचि रहती है, नाना जीवा नाना कुमार। कहाँ आया है मालूम? नियम सर। अतः धर्म सुख यश में से मनुष्य को किसकी साधना अपने जीवन में करना चाहिए जिससे जन्म को सफल माना जाए, इसके विषय में विभिन्न लोगों के विभिन्न मत है, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। जो केवल लोकानुसारी है, लोकानुसारी यानी लोक में जो मान्यता चलती है उसके अनुसार वो भी सोचते हैं, उनमें से कुछ तो ऐसा मानते हैं, कुछ तो नहीं कुछ लौकिक जन तो ऐसा मानते हैं कि धर्म की साधना करने से ही मनुष्य जन्म की सफलता है। अब वो धर्म क्या है भले मालूम हो नहीं हो, कुछ मानते हैं कि केवल सुखों को भोग में ही मनुष्य जन्म की कृतकृत्यता है। आजकल धर्म को मानने वाले कम हो गए हैं, लौकिक सुख भोग लिए हमने तो हम सफल हो गए। कुछ कहते हैं कि यश कमाने में ही सार्थकता है, इस तरह वे तीनों में से एक एक की साधना में ही समझते हैं कि मनुष्य ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया, उसे कुछ करना शेष नहीं रहा। इन लौकिक जनों से दूसरे नंबर पर वे हैं जो अपने को शास्त्रज्ञ भी मानते हैं। शास्त्रज्ञ ने वो तो वो वाले शास्त्रज्ञ नहीं, साइंटिस्ट नहीं, शास्त्र के जानकार। उनका मंतव्य है नहीं, उनका मानना है कि तीनों में से दो की साधना करने से मनुष्य कृतकृत हो जाता है, अर्थात कुछ धर्म और यश को, कुछ धर्म और सुख को, और कुछ यश और सुख को साधन करने से जन्म को सफल मानते हैं। यानी दूसरे टाइप के लोग उसमें से किसी दो की साधना करते हैं, किंतु लौकिक जन और शास्त्रज्ञ दोनों के ही अभिप्रायों को समझने वाले ग्रंथकार का मत है कि तीनों में से एक एक या दो दो के सेवन करने से जन्म सफल नहीं होता, किंतु तीनों की ही साधना करने से मनुष्य जन्म सफल होता है। अतः गृहस्थ को अपने जीवन में धर्म भी करना चाहिए, धर्मानुकूल सुख भी भोगना चाहिए। कैसा सुख? धर्मानुकूल। और संसार में जिनसे यश हो ऐसे परोपकार के कार्य भी करना चाहिए। धर्मानुकूल यानी धर्म के अनुकूल सुख, यानी जो जैसे कोई अधर्म करके पाप कार्य करके भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इंद्रिय सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी बात नहीं है। धर्म के अनुकूल ऐसे जो सुख है उसकी बात है। यहाँ पर शुभ भाव के साथ साथ सम्यक को प्लस शुभ भाव, क्योंकि पहले धर्म की बात बताई थी कि जो सांसारिक अभ्युदय और मोक्ष को प्राप्त करावे वो धर्म है। ऐसी बात निकालो, देखो धर्म की बात हमने पहले ही देखी थी। और ये भी बताया था कि धर्म का प्रारंभ ही सम्यक दर्शन से होता है। अब ये जो तीन बातें त्रिवर्ग कहा था उसको मिला, वो तो 25 पर है, पर ये जो त्रिवर्ग बताया ना धर्म अर्थ काम की बात, दस पर की बात हाँ। देखो धर्म अर्थ काम को त्रिवर्ग कहते हैं, 14 पेज पर नीचे का पैराग्राफ हाँ। जिससे सांसारिक अभ्युदय पूर्वक, अभ्युदय ने उन्नति ऊपर चढ़ना, मोक्ष की प्राप्ति होती उसे धर्म कहते हैं, समस्त प्रयोजन सिद्ध होते उसे अर्थ कहते हैं, और सभी इंद्रियों की तृप्ति होती उसे काम कहते हैं। अब यहाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे पहले इनकी। तो यहाँ कहते हैं अपना पेज 29 चल रहा है कि गृहस्थ को अपने जीवन में धर्म भी करना चाहिए, धर्मानुकूल सुख भी भोगना चाहिए, यानी धर्म के विरुद्ध की बात छोड़नी चाहिए। ये अपने मनमाने जो सुख है उसमें सुख उसकी बात नहीं आ, और संसार में जिनसे यश हो यानी परोपकार के कार्य भी करने चाहिए। ये बात है, जैसे मंदिर बनाने, शास्त्र चकवाने, दूसरों का स्थितिकरण करने के लिए कुछ दान भी देते हैं दुखियों को, उनको लौकिक शिक्षण पढ़ाने में उसके लिए भी काम में आते हैं, तो कहते परोपकार के कार्य भी करने चाहिए। इस तरह सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर यदि पूर्ण संयम धारण करने की शक्ति आदि का अभाव है तो एक देश संयम अवश्य धारण करना चाहिए, ऐसा कथन करते हैं। यानी धर्म धारण करना चाहिए ना, उसके लिए ये लिया। पहले हम ये ऊपर 15 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। मूलोत्तर गुण निष्ठाम अधिष्ठितं पंच गुरुपद शरण्यः दानय जन प्रधानो ज्ञान सुधाम श्रावक पिपासु स्यात्। क्या कहते, जो मूल गुण और उत्तर गुण में निष्ठा रखता है, मूलोत्तर गुण, मूल गुण उत्तर गुण निष्ठा रखता है, ने श्रद्धा रखता है, पंच गुरु पद शरण्य। पंच गुरु कौन होते हैं? हाँ, साधु। ये पंच गुरु कहते हैं उसको, अरहंत आदि पंच गुरुओं के चरणों को ही अपना शरण मानता है। उनके चरण को शरण मानना का अर्थ क्या है? उन्होंने जो उपदेश दिया है, जिस मार्ग पर वे चले हैं, वैसे अपन स्वयं प्रकट करे तो हमने उनकी शरण ली, ऐसा कहेंगे। और क्या लिखे? दान यजन प्रधानम। दान तो समझते हैं, यजन यानी पूजा, दान और पूजा जिसके प्रधान कार्य है। कल आपने पूछा था ना, स्वाध्याय करेंगे तो फिर पूजन करने की क्या आवश्यकता, ऐसा कुछ लोग पूछते हैं। तो जिनसे हमें ये प्राप्त हुआ है मार्ग, ऐसे देव है जो साक्षात उसका आचरण करने वाले गुरु है, और जो हमारे शास्त्र है, तीनों ही अष्टद्रव्य से पूजनीय है और प्रतिदिन उनकी पूजा करनी ही चाहिए। तो कहते दान और पूजा जिसके प्रधान कार्य है, तथा ज्ञान सुधाम पिपासु, ज्ञान रूपी अमृत को पीने का इच्छुक है वह श्रावक है। ज्ञान रूपी अमृत को पीने का इच्छुक का अर्थ होता है स्वाध्याय में उसको रुचि है, और अपने आत्म ज्ञान में भी, आत्मा में भी लीनता वारंवार करने का प्रयत्नशील है, इसको कहेंगे ज्ञान रूपी अमृत को पीने का इच्छुक। नंबर 30 पृष्ठ पर आते हैं। विशेषण, जो गुरु आदि से धर्म सुनता है वह श्रावक है, अर्थात एक देश संयम के धारी को श्रावक कहते हैं। देश व्रत कहो, एक देश संयम को, बात एक ही है। श्रावक के 8 मूल गुण और 12 उत्तर गुण होते हैं। ये सब आने वाली है विस्तार से चर्चा, कौन से है, क्या है इसके। उत्तर गुणों के प्रकट होने में निमित्त होने से तथा संयम के अभिलाषियों के द्वारा पहले पाले जाने के कारण मूल गुण कहे जाते हैं। क्या कहते हैं? मूल गुण क्यों कहते हैं? कि जो पहले पाले जाते उसको मूल गुण कहा, और वो उत्तर गुणों के प्रकट होने में निमित्त है, इसलिए उसका नाम है मूल गुण। और मूल गुणों के बाद सेवनीय होने से तथा उत्कृष्ट होने से उत्तर गुण कहलाते हैं। प्रथम मूल गुण और पश्चात उत्तर गुण। गुण कहते हैं संयम के भेदों को। जो संयम के भेद प्रथम पाले जाते हैं वे मूल गुण हैं। मूल गुण में परिपक्व होने पर ही उत्तर गुण धारण किए जाते हैं। किसी लौकिक फल की अपेक्षा न करके निराकुलता पूर्वक धारण करने का नाम निष्ठा रखना है। तथा अरहंत आदि पंच परमेश्वर के चरण ही उसके शरण्य होते हैं, शरण लेने योग्य होते हैं। अर्थात उसकी यह अटल श्रद्धा होती है कि मेरी सब प्रकार की पीड़ा पंच परमेश्वर के चरणों के प्रसाद से दूर हो सकती है, अतः वे ही मेरे आत्मसमर्पण के योग्य है। इस प्रकार सम्यक दर्शन पूर्वक देश संयम को धारण करने वाले श्रावक का कर्तव्य यानी आचार है चार प्रकार का दान। क्या कहते हैं? पहले सम्यक दर्शन पूर्वक ये कंडीशन डाली है। किसी भी श्रावकाचार की बात करेंगे हम, कोई भी निकाल के देखो आप, वो भले रत्नग्रंथ श्रावकाचार हो या अन्य भी कोई बड़े बड़े ग्रंथ हो, सबसे पहले अधिकार में तो सम्यक दर्शन अधिकार लिया है। सम्यक दर्शन से ही शुरुआत होती है, फिर सम्यक ज्ञान अधिकार की चर्चा आती है, फिर सम्यक चरित्र की चर्चा आती है। यानी पहले सम्यक दर्शन पूर्वक ही इन व्रतों को आदि अंगीकार किया जाता है। तो उसमें क्या क्या बातें बताई? चार प्रकार का दान, पांच प्रकार की जिन पूजा जो आगे बतलाएंगे। यद्यपि श्रावक का कर्तव्य आजीविका भी है, किंतु वह तो गौण है। श्रावक धर्म की दृष्टि से, यानी श्रावक धर्म की दृष्टि से, श्रावक धर्म जिसको कहेंगे, प्रधान कार्य क्या क्या है? आचार, दान और पूजा है। यह बतलाने के लिए प्रधान पद रखा है। अभी हमने पढ़ा था ना प्रधान, ये पहले श्लोक में देखा था हमने, दान यजन प्रधानो, जिसका प्रधान कार्य क्या है उसकी बात। प्रधान यानी मुख्य कार्य, यानी श्रावक है तो अपने आजीविका के लिए कुछ तो काम कार्य करेगा, धंधा व्यापार करेगा, परंतु यहाँ तो धर्म की मुख्यता है ना, तो श्रावक क्यों कहते हैं उसको? समय दृष्टि तो है ही है, और उसके साथ उसके जो आचरण में करने योग्य जो बातें हैं, दान है और पूजा है, यह बतलाने के लिए प्रधान शब्द उन्होंने रखा है। तथा ज्ञानामृत का पान करने के लिए वह सदा अभिलाषी रहता है। यह ज्ञानामृत है स्वर पर का भेद ज्ञान रूपी अमृत। ये भेद ज्ञान को यहाँ ज्ञानामृत कहा, वारंवार स्वपर भेद ज्ञान करते रहता है, उसी से उसकी ज्ञान पिपासा शांत होती है। आपको कुछ कहना है इसमें?
पूछा था कि भाई पूजा करना क्या नहीं करना, या नहीं कुछ लोग कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो लिखा है नीचे से पांचों लाइन में श्रावक धर्म की दृष्टि से प्रधान आचार यानी प्रधान जो बातें
कार्य दान और पूजा,
दान और पूजा है। आचार भी उसमें है लेकिन दान भी करने को कहा, पूजा भी करने को कहा।
एक्चुअली दान और पूजा को उन्होंने आचार कहा, वहाँ स्वल्पविराम नहीं चाहिए शायद। प्रधान आचार क्या है तो दान और पूजा है।
दूसरी बात ऊपर भी ये है कि उसके ऊपर तीन लाइन इस प्रकार, चौथी लाइन इस प्रकार सम्यक दर्शन पूर्वक मिल गया। देश संयम को धारण करने वाले श्रावक का कर्तव्य आचार है, कर्तव्य का आचार है कि चार प्रकार का दान और पांच प्रकार की जीव पूजा, यानी हमने थोड़ा सा स्वाध्याय का हमें आदर्श लगा ली है और हम ऐसा मान रहे हैं कि पूजन पूजन करना नहीं कोई आवश्यकता नहीं, आप जब स्वाध्याय करेंगे बहुत बढ़िया। ये बात तो हमें तब जब हम सोनगढ़ जाते थे तो मैंने कहा था, निमंत्रण ने बताया कि आपने केवल ज्ञानी को ही नहीं भेजा कि जिनके तरफ से तुम्हें ये बात मिली है और तुम उनका अहोभाव नहीं करते हैं कि तुमने क्या पता कि आज नहीं 30-35 साल पहले की बात है। यानी हम ये जो मानते हैं बिल्कुल यहाँ लिखा है कि श्रावक का कर्तव्य है। और एक बात बहुत अच्छी लिखी है, जरा तकलीफ देने वाली लेकिन मेरी नजर तो वही जाती है, यहाँ लिखते रहे को 1, 2, 3, 4, 5 लाइन है, यद्यपि श्रावक का कर्तव्य आजीविका भी है। ऐसा नहीं कहते कि तुम तुम्हारे घर बार छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, काम धंधा छोड़ो, आजीविका करना यानी लाइवलीहुड जिसको हम अंग्रेजी में बताते हैं तो करना है, किंतु वह गौण है। यानी मत करो ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन उसी के पीछे लगे रहो, बचाए भगवान तुम्हें, ऐसा यहां बोलते भगवान
बचाए।
और इसलिए फिर आगे कहते हैं कि श्राव धर्म की दृष्टि से प्रधान आचार तो क्या है कि दान और पूजा है, और ये इसके पहले तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होनी चाहिए, वो पहले रखना पड़ा। और सम्यक्त्व की प्राप्ति करने के लिए स्वाध्याय के द्वारा ही अपने स्वरूप को जानना ये बात है, और वो जानने के लिए शास्त्र स्वाध्याय करना आवश्यक है। शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा हमें वस्तु का स्वरूप ज्ञान में आए, यानी मेरा स्वभाव मुझे पता लगे कि मैं ऐसा हूं, तभी बात आगे बढ़ने वाली है। तो बहुत अच्छा पुस्तक निकाला आपको, बहुत बहुत बातें इसमें है, लेकिन ये बहुत ताल जा रहे थे कहते हैं उसको कहां से मालूम पड़ा, मेरे को दया खाई कर रोज में नींद नहीं आई। हाँ अभी बहुत पीछे भी जाएंगे तो है, लेकिन चलो पहले लाइन में लिखा नहीं, तो एक देश संयम के धारी को श्रावक कहते हैं। यानी ये संयम कैसा है, एक देश में यानी श्रावक की भूमिका पंचम स्थान की है। कहते हैं ना चौथे को भी श्रावक कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन वो उपचार से कहते हैं। यहां तो क्लियर कट दिया है एक देश संयम, यानी जो अनुव्रत आदि जो पालते हैं, संयता संयत है, विरता विरत है, उसको श्रावक कहेंगे। और वो होने के लिए उसको समय को क्या आवश्यकता है, ये पहली बात है।
हाँ आपका प्रश्न है कि सम्यक तो जिसको नहीं है, जो दान देना जिन पूजा, बिल्कुल, क्योंकि सम्यक की पात्रता तो होनी चाहिए ना, उसकी तो पहली बात आई थी कैसी कैसी पात्रता होती, हमने देखा था न्यायपूर्वक कैसा जीवन बिताते, बहुत सारी हमने उसके देखे थे विस्तार से श्लोक देखा था उसका। और यहाँ तो समय दृष्टि श्रावक की बात, अभी उसके जो व्रतों की बात, मूल गुण और उत्तर गुण की बात करेंगे अभी इसके आगे, परंतु श्रावक तो देखो, श्रावक तो जैन कुल में है, उसको तो सामान्य से श्रावक कहने की पद्धति, प्रथमानुयोग में तो कहेंगे यहाँ सारे श्रावक इकट्ठे हुए हैं, उपचार से भी श्रावक कहेंगे, इसे श्रेणिक राजा को तो श्रावकोत्तम कहा था, उसका गुणस्थान कौन सा था आपने कैसा बताया, हाँ शायक हुआ तो क्या हुआ, शायक तो सातवा भी नरकायु बांधने वाले के, क्योंकि बाद में समय तो हुआ था उनको, तो उसके पांचवा गुणस्थान भी प्रकट नहीं हो सकता, ये नियम है। जिसने मनुष्यायु बांधी है, तिरियंचायु बांधी है, नरकायु बांधी है, और बाद में जिसके समय दर्शन हुआ है उसको पांचवा छठा आदि ऊपर के गुणस्थान प्रकट ही नहीं होगी, क्योंकि उसकी सत्ता में वो आयु बांधी हुई पड़ी। हाँ देवायु बांधी हुई या कोई अबद्धायु हो तो ऊपर के गुणस्थानों में जा सकता है। इसलिए सैनिक राजा को श्रावकोत्तम अन्य जगह के ऐसे लिखा हुआ पाया जाता है, परंतु वो भी उपचार का कथन है। यहाँ श्रावक कहने से पांचवा गुणस्थान वाला समझना
है। आपका कहना है यहाँ जो पंचम गुणस्थान की बात है वो तो सम्यक में है, क्या ये सम्यक भी को ही लागू होता है? सम्यक को तो लागू होता ही है, लेकिन अध्यात्मिक को भी लागू होता है, क्योंकि हमने देखा है पहले गुणस्थान से पांचवें गुणस्थान में जाने वाले होंगे कि नहीं, तो पहले द्रव्य लिंग श्रावक होगा तो भाव श्रावक होगा, ये भी हमने ऐसा देखा ना, अढ़ाई गुण का पालन करने वाला ही सातवें में जाएगा, तो ये तो आगम के अनुसार बताया, मेरे बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। समय दृष्टि खाना खाता है कि नहीं, तो हमको खाना चाहिए कि नहीं, हम तो मीठा दृष्टि है नहीं आ रहे जाने अब
आपके आपके
यानी यहाँ तो इसलिए सम्यक के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि कोई अपने को सम्यक की बिना ही बाह्य आचरण करे और माने कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, वो हमारे से धोखा न हो जाए, इसलिए ये बार बार बताने के लिए। ये तो एप्लीकेबल टू एवरीबडी ऐसा है।
अभी हम 16 नंबर की गाथा के शुरू में जो लिखा है उसकी बात हम देखेंगे। ये ऊपर भी उन्होंने आत्मानुशासन वगैरह के बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, परंतु उसके एक एक जो श्लोक है उसका डिटेल उसका ट्रांसलेशन नहीं है, अनुवाद नहीं है। इस प्रकार देश विरति रूप पंचम गुणस्थान का कथन करके उसके भेद जो द्रव्य भाव रूप 11 श्रावक प्रतिमाएं हैं, यानी प्रतिमा के लिए द्रव्य प्रतिमा और भाव प्रतिमा, इसे दो दो भेद करेंगे, उनमें से महाव्रतों के पालन करने की लालसा रखने वाला जो सम्यक दृष्टि अपनी शक्ति के अनुसार एक भी प्रतिमा का पालन करता है उसका अभिनंदन करते हैं। ये क्या कंडीशन क्या बताई? महाव्रतों के पालन करने की लालसा रखने वाला, किसकी इच्छा है कि मैं कैसे कब मुनि हो जाऊंगा, अंतरंग में इतनी स्थिरता पाऊंगा। अब हम ये 16 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। रागादीक्षय तारतम्य विकसत शुद्धात्म संवित सुख स्वादात्म स्वबहिर्बहिर्त्रसवधा द्यंगोपयोहात्मसु सद्रुग्दर्शनकादिदेश विरति स्थानेषु चैकादश स्वेकं यश्रयते यतिव्रतरत स्तं श्रद्धदे श्रावकम्। को क्या कहते हैं? रागादि क्षय तारतम्य विकसत, यानी देश विरति के दर्शनिक आदि 11 स्थान। नलिन भाई 11 स्थान कुछ मालूम है? हाँ, ये प्रतिमाओं के जो नाम है उसी को 11 स्थान बताए, वो आएंगे दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, प्रसाद उपवास वगैरह जो है तो उसकी बात है, सामायिक प्रसाद उपवास। तो देखो, देश विरति के दर्शनिक आदि 11 स्थान, अंतरंग में राग आदि के क्षय से प्रकट हुई शुद्ध आत्मानुभूति रूप सुख या उससे उत्पन्न हुए सुख के स्वाद को लिए हुए, ये मुख्य बात है। ये जो प्रतिमाएं धारण करता है या प्रतिमाएं उसके है ऐसा जब कहेंगे तो हम क्या बात है कि अंतरंग में राग आदि का क्षय हो गया, अनंतानुबंधी नहीं है, अप्रत्यय खानावरण नहीं रहा उसका उदय, और शुद्धात्मानुभूति रूप सुख है वहां पर। अकेले बाह्य से आपने बताया क्या मिथ्या दृष्टि इसको अंगीकार नहीं करे? करेगा, परंतु उसको पांचवा गुणस्थान नहीं कहेंगे, उसको भाव प्रतिमा नहीं कहेंगे। उसने बस बाह्य से वो व्रतों का अंगीकार किया है, वो एक प्रकार का उसका मिथ्या, तो यदि उसको पता है कि मुझे अभी ये कुछ प्राप्त करना है और यदि मानता है कि मैं पंचमोन स्थान वर्ती हो गया क्योंकि मैं ये पालन कर रहा हूँ, तो उसके मिथ्यात्व का दोष लग रहा है। परंतु उसके पता है कि अभी मुझे सम्यक तो प्राप्त करना है और यही करने योग्य है, और फिर भी अपने शक्ति के अनुसार व्रतों का पालन कर रहा है, तो उसका निषेध तो कभी भी नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि जब तक ऐसी अवस्था प्रकट नहीं होती वितरागता की, तब तक शुभ राग रूप यानी प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करो, परंतु श्रद्धा तो ऐसी रखो कि ये भी है, ये है त्यागने योग्य, श्रद्धा में लेना। ऐसे यहाँ कहते हैं कि ये जो 11 स्थान बताए हैं वो किसके साथ है, किसको लिए हुए है, तो कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद का जो स्वाद है वो उसने चखा है, उसके वो प्रकट हुआ। उसके लिए क्या शब्द आते हैं, देखो, अंतरंग में राग आदि के क्षय से प्रकट हुई शुद्धात्मानुभूति रूप सुख या उससे उत्पन्न हुए सुख के स्वाद को लिए हुए, यानी अकेले बाह्य में शरीर की क्रिया या कोई जो विशिष्ट आचरण उसकी बात नहीं है, परंतु शुद्धात्मा की अनुभूति है और रागादि का वहां क्षय है। क्षय है नहीं, वो रागादि का वहां उदय नहीं है, वो है ही नहीं उसके। और बाह्य में ये अंतरंग में बताए, अंतरंग में राग रहित अवस्था है और शुद्धात्मा का अनुभव है, उसका सुख भी है उतनी मात्रा में। और बाह्य में त्रस हिंसा आदि पापों से विधिपूर्वक विरति को लिए हुए है, विधिपूर्वक यानी उसने बिल्कुल प्रतिज्ञा पूर्वक जो कहेंगे इसका त्याग किया है, उसका पालन भी कर रहा है, त्रस हिंसा आदि लिए है, क्योंकि यहाँ श्रावक की बात है, ये स्थावर हिंसा से विरत नहीं हुआ है, वो तो मुनि की बात होगी सकल संयमियों की, यहाँ पर त्रस हिंसा का त्यागी है। आदि में अन्य भी बातें बताएंगे यहाँ पर, मुनियों के व्रतों में आसक्त जो सम्यक दृष्टि, मुनियों के व्रतों में आसक्त है, नहीं मुनियों के व्रत मैं कब धारण करूंगा ऐसे अंतरंग में उसको इच्छा है, ऐसे जो सम्यक दृष्टि उनमें से एक भी प्रतिमा का पालन करता है वह श्रावक अच्छा करता है ऐसा मैं मानता हूं, ऐसे पंडित आशाधर जी ने लिखा है। विशेष श्रीमद जी ने स्वयं बताया ना कि ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा, एकाकी होकर मैं मुनि होकर वन में कब विचरूंगा, इसका अर्थ क्या है, इतनी आत्मस्थिरता कैसे आ जाएगी। विशेषण, प्रत्येक प्रतिमा के दो रूप होते हैं, एक भाव रूप या अध्यात्म रूप और दूसरा द्रव्य रूप या बाह्य रूप। बाह्य में जो आचरण की मुख्यता से, एक वर्णन तो बाह्य के आचरण की मुख्यता से होती है, परंतु अंतरंग मुख्य है वहां पर, जो भाव रूप की बात है, रागादि का क्षय कहो या रागादि की उत्पत्ति नहीं है वहां पर, और अतीन्द्रिय सुख का वेदन चल रहा है। बाह्य रूप देखा जा सकता है किंतु अंतरंग रूप को दूसरे लोग नहीं देख सकते, ये दूसरे लोग नहीं देख सकते, और दिखता तो बाह्य से जो है, इसलिए लोगों की ऐसी भ्रमणा हो जाती है, ये बाह्य में ही जो अंगीकार करने योग्य है, अंतरंग तो पता नहीं है कुछ और अभ्यास नहीं है, तो बस मैंने ये व्रत धारण किया और मैं इतनी प्रतिमा वाला हो गया, मैंने ये संयम धारण किया तो मैं संयमी हो गया या दूसरा संयमी हो गया, अपने को या दूसरे को उसी रूप से देखता है मानता है, परंतु मुख्य बात तो अंतरंग में होती है, और अंतरंग बहिरंग दोनों मिलकर वो गुणस्थान का स्वरूप, वो प्रतिमाओं का स्वरूप अंतरंग में है, परंतु बाह्य में कैसे भी स्वच्छंद आचरण है तो भी उसको प्रतिमा नहीं कहेंगे, तो भी उसको वो गुणस्थान पांचवा नहीं कहेंगे, तो दोनों का सुमेल होता ही है, और उसी को यहाँ नाम दिया है प्रतिमा का, द्रव्य और भाव दोनों होते हैं। देखो आपको तो मालूम है ना, तो कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, दो स्त्रियां थी, एक जा रही थी, दूसरी स्त्री क्या कुछ कूट रही थी, तो उसने उसको पूछा क्या कर रही है, तो मैं वो तो चावल निकाल रही हूँ उसमें से कूट के, तो उसने उसको देखा तो क्या, वो कूटते समय क्या होता है, चावल भारी होता है वो नीचे और ऊपर वो सारा पोतरा क्या कहते हैं छिलका, छिलके दिखाई दे, उसने सोचा चलो अपन भी ऐसा ही करेंगे, तो उसने छिलके इकट्ठे किए और फूटने लगे। हाँ, वो कोई कचरे के डब्बे के वहाँ छिलके पड़े थे, किसी ने चावल निकाल कर छिलके फेंक दिए थे, उसने छिलके इकट्ठे किए और उसको फूटने लगे। उसको चावल कब मिलेंगे भाई? हम भी क्या करते हैं, हमें कुछ लोग क्या करते हैं, देखा देखी बाहर से ही व्रत अंगीकार कर देते हैं और मान लेते कि हम उस गुणस्थान में पहुंच गए, परंतु ये स्वपर का भेद ज्ञान नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है और निर्णय तो बिल्कुल नहीं है तत्वों का, तो उससे उसके कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये कहते कि बाह्य रूप देखा जा सकता है, अंतरंग रूप दूसरे लोग नहीं देख सकते। बहुत तो स्व संवेद्य होता है, क्या होता है यानी क्या? हाँ, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस बाय वन ओन सेल्फ। हाँ, अंग्रेजी में बोलो, भाव समझना चाहिए, कोई बात नहीं। स्व संवेदन अपने ही अनुभूति में आवे, अपने ही ज्ञान में जाना जाए, ऐसा होता है। देखो वेदन कहाँ, अकेले ज्ञान में तो बहुत सारी आते हो बातें, परंतु वेदन अलग है और ज्ञान अलग है। अब डॉक्टर के पास, आपके पास आते हैं पेशेंट, तो उनके लक्षण देखते हैं, उनकी जो कथन है वो सब देखा और आपने जाना कि इसके पेट में दर्द है, जाना कि आपने वेदन किया उसका? जान, वेदन नहीं किया, वेदन तो अपने पेट में दर्द है उसका होता है। वो स्वस्थ संवेद्य है, दुख हुआ कहाँ दिखा, दिखाओ मैं कहाँ दुख हो रहा है। कोई हमने ऐसी घटना किसी की सुनी और हमें दुख हुआ, दिखाओ। लोग तो पूछते हैं ना, आत्मा दिखाओ, तो हम तो पूछते तुम्हें दुख हुआ है वो दिखाओ, तुम्हें भूख लगी वो दिखाओ, वो तो नहीं देख सकते है ना, वो तो स्व संवेद्य है। यहाँ तो अतीन्द्रिय आनंद की बात हो रही है। ये जो अंतरंग स्वरूप जो है पांचों गुणस्थान का, जो प्रतिमाओं का, वो तो स्व संवेद्य होता है। जब चारित्र मोहनीय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय होता है, ये पूरा वाक्य पढ़ के फिर उसकी बात समझाऊंगी, अर्थात उनके उदय का अभाव होता है और देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है, तब राग द्वेष के घटने से निर्मल चिद्रूप की अनुभूति होती है। ये चिद्रूप क्या होता है? चित्त रूप, चैतन्य रूप, चैतन्य ने ज्ञान दर्शन में ऐसा जो अपना रूप है उसकी अनुभूति होती है। उसका अर्थ क्या है कि राग द्वेष रहित, अभी तो क्या है, ज्ञान भी हो रहा है हमें, राग भी, राग द्वेष के परिणाम भी हो रहे हैं और दोनों का भेद पता नहीं है, तो दोनों अपने में होते हुए ख्याल में आ रहे हैं, तो राग और ज्ञान मिक्स होते हुए उसकी खिचड़ी, ये मेरा स्वरूप है ऐसा लगता है। राग से भेद ज्ञान नहीं हुआ है, ये तो पर चीज है, मैं तो भिन्न हूं, ये तो समझता है, परंतु ये मैं शरीर को रखकर बोलता है, ये तो मैं हूं और ये बाकी सारा पर है, ये अज्ञानी का सोपर हो गया है ना। कुछ पुद्गल को स्व माना, कुछ पुद्गल को पर माना, उसने तो आत्मा को जाना भी नहीं। ये शरीर के बाद फिर शरीर तो पर है, मैं आत्मा भिन्न हूं तो अन्यमति भी कहते हैं, परंतु ये जो राग से भिन्नता की बात है वो तो जैनियों की विशेषता है, और वो जाने बिना, उसका भेद ज्ञान किए बिना आत्मा की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि सात तत्व भिन्न भिन्न बताए, तो सात तत्व भिन्न भिन्न है तभी बताए हैं, तो राग द्वेष के परिणाम तो असुर तत्व में आ गए और मैं तो जीव तत्व हूं, जानन देखन वाला हूं, तो ये दोनों बिल्कुल भिन्न है, उनका लक्षण जुदा है, उसका फल जुदा है, उसकी अनुभूति में जुदा ही है सारा, वो तो दुखमय है मैं तो सुखमय हूं। तो कहते हैं कि चिद्रूप की अनुभूति होती। अब इसके लिए उन्होंने कर्मों के आधार से बताया, तो ये चारित्र मोहनीय क्या होता है पहले ये बात देखते हैं। आपको मालूम है कौन से कर्म का भेद है? ये चारित्र मोहनीय कर्म कौन से कर्म का भेद है? प्रेरणा बिना बताएंगे, मोहनीय मोहनीय आपको मालूम है, ये मुझे मालूम है। मोहनीय कर्म के दो भेद है, आठ कर्मों के नाम तो सुने हैं, कौन बताना चाहते हैं? आप बताओगे? हाँ बताओ बताओ। हाँ मोहनीय, अंतराय, हाँ वेदनीय, नाम आयु, वेदनीय आयु, नाम और गोत्र, पहले चार बताए वो क्या है, घाती कर्म। कौन से घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरा, ये इनको घाती कर्म कहते हैं। अघाती कर्म वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। अब ये चारित्र मोहनीय जो कहा, ये जो हमने मोहनीय कर्म देखा उसके दो भेद है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, ये कर्मों के नाम। अब चारित्र मोहनीय में भी और उसके विस्तार है, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कर्मों के नाम। जीव के परिणामों के भी वही नाम है और कर्मों के भी वही नाम है। जब कर्म कहेंगे आगे कर्म शब्द लगाएंगे, जैसे अनंतानुबंधी क्रोध कर्म, या अनंतानुबंधी कषाय कर्म कहेंगे, वैसे अप्रत्याख्यानावरण कर्म, प्रत्याख्यानावरण कर्म, संज्वलन कर्म, ये कर्मों के नाम। और जीव के जो भाव है उनके भी वही नाम है, उसको हम केवल कषाय कहेंगे और उनको कर्म कहेंगे। तो यहाँ अभी दो भेद किए उन्होंने, सर्वघाती और देशघाती। चारित्र मोनी में अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण है, प्रत्याख्यानावरण है और संज्वलन। अभी हम इनकी मुख्यता से बात करेंगे। नौ नौ कषाय भी है, उसको हम अलग से समझाने के लिए हम इसकी मुख्यता से बात करेंगे। तो ये घाती कर्म, ये तो नक्की है। तो घाती कर्मों में सर्वघाती भी होते और देशघाती भी होते। सर्वघाती करते अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करते हैं, देशघाती यानी घात तो करते पर पूरा घात नहीं करते, पूरा घात करने में सब वो सक्षम नहीं है। उदय भी रहता है और प्रतिपक्ष जो गुण है उसका कार्य भी चलता रहता है। अब हम देखते हैं अनंतानुबंधी क्या है, तो सर्वघाती है, पूरा घात करता है, किसका? सम्यक दुर्गा। वो प्रत्याख्यानावरण क्या है? वो भी सर्वघाती है, उसका प्रतिपक्ष क्या है? तो अनुव्रत, उसके नहीं होने देते तो उसका घात करता है। प्रत्याख्यानावरण क्या है? वो तो संयम का घात करता है, प्रकट होने नहीं देता। संज्वलन कैसे है? वो तो चालू रहते हैं, वो तो देशघाती का उदय है उनके, तब संज्वलन का उदय भी है, संयम तो चल रहा है परंतु यथाख्यात वाला संयम नहीं होता, इस तरह से उनका स्वरूप है। अब यहाँ जो बात बता रहे हैं कि सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय होता है, ये जो निषेक क्रम से उदय में आते हैं, कर्म परमाणु क्रम से उदय में आते हैं, जब बंधे थे तो ये सर्वघाती प्रकृतियों में तो सर्वघाती ही सारे परमाणु होते हैं, और जो देशघाती प्रकृतियां हैं उनमें सर्वघाती भी होते और देशघाती भी होते। चारित्र मुनि को समझने के पहले हम ज्ञानावरण पर समझेंगे तो आसान होगा। जैसे ज्ञानावरण में पांच प्रकार है, सुशीला बेन कौन कौन से? हाँ, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपरे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। इसमें से अपने प्रतिपक्ष का पूरा घात करने वाला कौन सा है? केवल ज्ञानावरण, वो सर्वघाती है। उसके स्पर्धक, स्पर्धक यानी अनुभाग को बताने वाले वो स्पर्धक होते हैं, वो कैसे? तो पूरा घात करते हैं अपने प्रतिपक्षी का, ज्ञान का पूरा घात करते, ऐसा नहीं कहा। हमारे आपके केवल ज्ञानावरण का उदय चल रहा है तो हमें केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, परंतु तो क्या वो हमारे मतिशुद्ध ज्ञान को रोक सकता है? नहीं रोक सकता। केवल ज्ञानावरण का उदय है, अपने प्रतिपक्ष को रोकेगा। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान तो हमारा चल रहा है, तो हमारे मति ज्ञानावरण की बात करेंगे अभी। मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, परंतु जब से बंदी थी और सत्ता में पड़ी थी तो उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती भी है। देखो, सर्वघाती में तो सारे ही सर्वघाती ही परमाणु होते हैं, परंतु जो देशघाती प्रकृति है उसमें दो टाइप होते हैं, कुछ सर्वघाती भी है कुछ देशघाती भी। सर्वघाती का उदय हो जावे तो पूरा घात हो जावे, देशघाती का उदय है तो चलता रहा, उसका ज्ञान भी चल रहा है और उसका उदय भी चल रहा है। पहले हम अवधि ज्ञानावरण की बात करेंगे। अवधि ज्ञानावरण भी देशघाती प्रकृति है, उसमें भी दो प्रकार है, सर्वघाती भी परमाणु पड़े हैं और देशघाती भी पड़े हैं। आपका अवधि ज्ञान है अभी? नहीं, उसका अर्थ है सर्वघाती का उदय। बहुत अच्छा, अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती का हमारा उदय चल रहा है, और जिसका अवधि ज्ञान होता है उसका क्या होता है? देशघाती का उदय। तो उनके सर्वघाती का क्या हो जाता है? सत्ता में पड़े हैं, उदय में आते आते एक समय के लिए देशघाती होकर उदय में आए। परमाणु तो जो उदय रूप होने आए हैं, पूरी स्थिति पूरी हुई है, उदय के सम्मुख हुए, उसका उदय तो होगा जरूर। परमाणु तो जीव को छोड़कर जा रहे हैं, किस रूप से उदय में आ रहे हैं? देशघाती रूप से, एक समय के लिए। उसके ऊपर के निषेक में तो सर्वघाती रूप से पड़े, यानी वहां दोनों ही परमाणु है, देशघाती भी है और सर्वघाती भी। सर्वघाती वो देशघाती रूप होकर उस रूप से उसका फल मिलता है, यानी हमारा आपका जो मति ज्ञान आवरण है उसमें सर्वघाती भी पड़े हैं और देशघाती भी पड़े हैं। उदय के समय में सर्वघाती है, वो देशघाती रूप से टर्न होकर उदय में आते हैं, तो हमारा आपका मति ज्ञान चल रहा है। मति ज्ञान आवरण का उदय भी है और मति ज्ञान भी चल रहा है। हाँ, उसमें अभी जो आवरण कम अधिक होगा तो हमारा बुद्धि यानी इंटेलिजेंस ही ना अधिक होता है। जिसका आवरण अधिक उसकी बुद्धि कम, जिसका आवरण कम उसका उघाड़, ज्ञान का उघाड़ अधिक। इस तरह से आपका प्रश्न है, बादाम खाने से वो ज्ञान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, आवरण थोड़ा कम। हाँ, क्या कहते हैं, अन्य अन्य ज्ञान का और उसका अत्यंत अभाव हो जाएगा। कर्म में और बदाम में है। तो यहाँ जो बात हो रही है, अब यहाँ तो श्रावक यानी पांचवा गुण स्थान है, उदय किस किस का चल रहा है? प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का। परंतु यहाँ ये बात है, अभी तक तो प्रत्याख्यानावरण सर्वघाती था। लक्ष्मी जी, ये बात नहीं है आप लोगों के लिए भी, प्रत्याख्यानावरण सर्वघाती प्रकृति है, परंतु पांचवे गुण स्थान के वहां जो विशुद्धि है उसके कारण वो देशघाती हो जाती है। तो उसमें सर्वघाती भी स्पर्धक है और देशघाती भी, देशघातीकरण होता है। हमने बात देखी थी कि श्रेणी में भी पूछा था कि यहाँ वो बाकी कर्म तो देशघाती होते, आपने मोहिनी की बात की नहीं, तो पांचों गुणस्थान से देशघाती हो जाते। इसलिए अभी प्रत्याख्यानावरण का हम क्षोभम यानी उसमें संयमा संयम को क्षोभम भाव में लिया है। क्यों? क्योंकि उसमें ये सर्वघाती का देशघाती का चलता है। ख्याल में आई बात? ये तभी प्रश्न शुरुआत में ऐसा होता था कि ये तो सर्वघाती प्रकृति है, इसके सारे ही परमाणु सर्वघाती है, तो इसमें क्षोभम कैसे घटित किया? तो कहते उसके वो देशघातीकरण हो जाता है पांचवें गुणस्थान की विशुद्धि के निमित्त से। और उसमें अभी देखो, अभी पढ़ेंगे चारित्र मोहनीय कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय होता है, ने उदय का अभाव होता है। इसी को उदयाभावी क्षय के, उदय का अभाव यही क्षय है। क्षय इसलिए कहा कि उसको खिर जा रहे, उदय में आकर निकल जा रहे, परंतु सर्वघाती रूप से उदय में नहीं आ रहे, देशघाती रूप से उदय में आ रहे। और देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है तब राग द्वेष के घटने से, क्योंकि दो कषाय अभी नहीं रहे, दो कषाय रहे हैं। कौन से दो कषाय? प्रत्याख्यानावरण संज्ञा। निर्मल चिद्रूप की अनुभूति होती है, उसको समय दर्शन तो है ही है, अधिक स्थिरता भी है, इसलिए वो अनुभूति भी निर्मल भी और अधिक दृढ़, जो कहेंगे अधिक गहरी। वह अनुभूति सुखरूप है, या उस अनुभूति से उत्पन्न हुए सुख का स्वाद उन प्रतिमाओं का अंतरंग रूप है। ये महत्व की बात है। पहले बताए थे बाहर से नहीं दिखाई देता, परंतु उस जीव को तो अनुभव में आ रहा है। तो क्या है उसका प्रतिमाओं का अंतरंग रूप? कि जो सुखरूप अनुभूति कहो, या अनुभूति से उत्पन्न हुए सुख का स्वाद उसके अनुभव में आ रहा है, उसका अंतरंग। जो जो उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर में आ गया, रागादि घटते जाते हैं। जैसे अभी हमने देखे ज्ञान में भी ज्ञानावरण की हीनाधिकता होती है, वैसे यहाँ प्रत्याख्यानावरण में भी बहुत सारे भेद हैं ना उसके। तो जितने अभी यहाँ जीव की अपेक्षा बात करेंगे तो रागादि घटते चले जाए, भले दो कषाय है अभी विद्यमान, परंतु उसमें भी हीनता चल रही राग की। तो जैसे जैसे रागादि घटते चले जाएंगे, त्यों त्यों आगे की प्रतिमाओं में निर्मल चिद्रूप की अनुभूति में वृद्धि होती जाती है। यानी सुख में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? और हमें लगता है कि बाहर के ऐसे कठिन होता है तो जीव को दुख होता है, और कहते भी थोड़ा दुख सहन करेंगे तो आगे सुख मिलेगा। तो जो मोक्ष अनंत सुखमय अवस्था है, और मोक्ष मार्ग दुखमय होगा क्या? नहीं। मुनि जीवन के लिए भी यही मान्यता है। अरे रे बिचारे कितना दुख सहन करते हैं। कौन बिचारे कह रहा है? जो स्वयं सुख में है वो दूसरे को बिचारा कहेगा। ये राग की होली में जल रहा है, स्वयं दुखी है, पता भी नहीं है दुख किसको कहें और सच्चा सुख किसको कहें, और वो कहता है बिचारे मुनिराज हो ऐसे तेज हवा में और बारिश में, वो वन जंगल में है, कितनी उनको तकलीफ होती होगी। तकलीफ वाला जीवन है ये। अंतरंग की जो अनुभूति है, देखो यहाँ तो प्रतिमाओं की बात है और यहाँ चिद्रूप की अंतर अनुभूति इतनी है, वृद्धि हो रही है। मुनिराजों की अवस्था क्या होनी चाहिए, कैसे उनकी सहज जो दशा है जिसको कहते हैं चलते फिरते सिद्धों के उपमा दिए गए, यानी तो वो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त भी कितना छोटा है, छठा सातवा छठा सातवा छठा, यानी निरंतर उनकी तो अनुभूति रूप ही दशा है ऐसा समझो। और उत्तरोत्तर आत्मिक सुख भी बढ़ता जाता है। कहीं भी ये प्रतिमाओं की बात आती है तो ये देखो यहाँ कितना स्पष्ट रूप से लिखा है कि आत्मिक सुख की निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, वही उसका अंतरंग रूप है, वही सच्चा है उसका स्वरूप है। इसके साथ ही श्रावक की बाह्य प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आए बिना नहीं रहता, वो तो सहज होता है। और हमने उल्टा समझ लिया, बाहर में ऐसा अंगीकार करो तो आपको वो गुणस्थान प्रकट होगा, ऐसे सब लोगों की मान्यता ऐसी चल रही है, ऐसा ही एक दूसरे को उपदेश भी दे रहे हैं। उपदेश में तो ऐसा है ना, ये प्रतिमा अंगीकार करो, ये व्रत अंगीकार करो, तुम तो सम्यक दृष्टि हो, ये व्रत अंगीकार करो, चारित्र मिल जाएगा। हाँ, राग करते करते वितरागता होगी, यानी ये व्रतों के कारण तुम्हें गुणस्थान प्रकट होगा, ऐसे मान्यता है। ये मान्यता की बात, श्रद्धा की बात छोड़ो, ये तो उसके साथ होते हैं और सहज होते हैं। जिसमें अंतरंग में इतनी स्थिरता है, ऐसे आत्मिक सुख का अनुभव हो रहा है, उसके बाह्य में कषायों की इतनी मंदता तो जरूर होती है, और उसके अनुसार उसके वो आचरण में भी बातें आएगी। वह प्रतिमा के अनुसार स्थूल हिंसा आदि पापों से निवृत्त होता जाता है, होता जाता ही नहीं, आगे आगे की जो प्रतिमाएं हैं उनमें इनकी तो कषायों की हीनता और उसके अनुसार होने वाले उनके आचरण भी पाए जाते हैं। ऐसा समय दृष्टि श्रावक सतत यह भावना रखता है कि कब मैं गृहस्थाश्रम छोड़कर मुनिपद धारण करूं। जो नीचे की व्रत प्रतिमाओं में उसको ऐसा लगता है कि अभी मैं और आगे बढ़ूं और अंतरंग में स्थिरता करूं, तो उसके आगे आगे वाली प्रतिमाएं भी सहज बनती है, क्योंकि वृद्धि तो अंतरंग में होनी है और बाह्य में भी वो सहज अवस्था वैसी होती चली जाती है, तभी उसका प्रतिमा धारण सफल माना जाता है। ऐसा श्रावक किसकी श्रद्धा का भाजन नहीं हुआ। श्वेतांबर साहित्य में तो पहली प्रतिमा एक मास, दूसरी प्रतिमा दो मास, तीसरी तीन मास, चौथी चार मास, इस तरह ग्यारहवीं ग्यारह मास तक ही पालने का विधान है। अर्थात पहली प्रतिमा एक मास पालकर दूसरी प्रतिमा लेनी होती है, दूसरी प्रतिमा दो मास पालकर तीसरी लेनी होती है, इस तरह एक से ग्यारह मास तक क्रमशः ग्यारह प्रतिमाएं पालने पर 1+2+3 11 का उन्होंने संकलन धन निकाला, 11×12/2 66 मास के बाद मुनिव्रत लेना होता है। ये पता नहीं था, मैं पहली बार सुना। अभी उन्होंने भी 800 वर्ष पहले उनकी कभी चलती रही है, क्योंकि वो मूल में उन्होंने इसमें है क्या क्या वो इन्होंने लिखा है, कैलाश चंद जी ने लिखा है क्या मूल में लिखा है, विशेषार्थ में नहीं, मूल में आशाधर जी ने नहीं लिखा, आशाधर जी ने नहीं लिखा, कैलाश चंद जी ने लिखा, क्योंकि उनके कुछ पढ़ने में आई होगी, श्वेतांबर साहित्य लिखा है ना। अब आगे का विषय कल से लेंगे। आगे दार्शनिक आदि श्रावकों का लक्षण कहते हैं, यानी जो 17 नंबर की जो श्लोक है वो हम कल पढ़ेंगे।
जावानी के ज्ञान से सूझे लोकारो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।